ओम शांति। थोड़ा जोर से बोले सभी। आज हम सबके बीच में बाप दादा और दादियों की लेखनी बनकर हमें शिव पिता और शिव शक्तियों की वाणी सुनाने के निमित्त मास्टर मुरलीधर आदरणीय राजू भाई जी पधारे हैं। आपका हम एक हाथ की ताली से हार्दिक स्वागत और अभिवादन करते हैं। आपका लौकिक जन्म उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास एक छोटे गांव के आध्यात्मिक परिवार में हुआ। सन 96 में बाबा के हस्तों से आपके लौकिक घर में गीता पाठशाला का शुभारंभ हुआ। उसी आध्यात्मिक वातावरण में आपके मन में अध्यात्म का बीज अंकुरित हुआ। 1971 में आप पहली बार माउंट आबू में आए और मन से यहाँ के ही हो गए। उसके बाद लौकिक पढ़ाई पूरी कर 1972 से माउंट आबू में समर्पित रूप से अपनी अथक सेवाएं दे रहे हैं। 1976 से आप परमात्मा महावाक्य मुरली सिंधी से हिंदी में अनुवाद करके सभी सेवा केंद्रों पर भिजवाने की सेवाएं दे रहे हैं। स्वयं अव्यक्त बाप दादा से आपको दिव्य बुद्धि का वरदान मिला हुआ है। उस वरदान के प्रमाण अपनी एकाग्र और कुशल बुद्धि द्वारा निमित बड़ी दादियों की प्रेरणाओं से ईश्वरीय विद्यार्थियों के पुरुषार्थ को सरल बनाने के लिए मुरली में उसका सार वरदान स्लोगन तथा विशेष पॉइंट हाईलाइट करने की विशेष सेवा आपको दी गई है। मुख्यालय से जो स्व उन्नति हेतु मासिक पत्र पुष्प निकलता है उसमें विशेष अव्यक्त इशारे बाबा एवं दादियों की प्रेरणाएं व क्लासेस आदि होती है, उन्हें आप ही प्रकाशित करते हैं। साथ में मुख्यालय में दादी जी के पास आने वाले पत्रों के जवाब देने पत्र व्यवहार का कार्य भी आप ही संभालते रहे हैं। अव्यक्त बाप दादा जब दादी हृदय मोहिनी यानी गुलजार दादी के तन में पधार कर महावाक्य उच्चारण करते थे तब उन्हें उसी समय टाइप करके तत्काल विश्व के कोने कोने में भेजने की सेवा के लिए आप ही निमित्त बने हो। आप राज्योग्या एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक भी हैं। आपके निर्देशन में शाश्वत योगी खेती प्रोजेक्ट देश विदेश में बहुत फास्ट गति से फैल रहा है। विश्व की चहु दिशाओं में भ्रमण करते हुए यूएसए यूके ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सिंगापुर मलेशिया नेपाल फिजी मॉरिशियस अफ्रीका तथा रूस आदि देशों में भी अनेक विश्व स्तरीय कार्यक्रमों में आपने भाग लिया है। ज्ञान के गहन मंथन के अभ्यास के कारण आपकी बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान का खजाना भरपूर है और आपने योग की गहन अनुभूतियां भी की है। ऐसे प्रभु के मस्तक मणि भाई जी के लिए हम कहेंगे आप बाप दादा के लाल हो, आप कहीं हजारों में एक हो। कोटों में कोई हो आप, धरती के चैतन्य सितारों में सहयोग के फूल बिछाए हैं आपने सबकी राहों में। तब तो स्वयं भगवान रखते हैं आपको अपनी निगाहों में तो अब अपने अनुभव रत्नों के साथ भाई जी हमें स्पष्ट करेंगे कि बाबा की श्रीमत अनुसार संस्कारों का शुद्धिकरण हम सहज रीति से कैसे करें। आदरणीय राजू भाई जी ओम शांति।
ओम शांति। सभी ने 3-4 दिन बाबा के इस चरित्र भूमि में, कर्म भूमि में, तपस्या भूमि में रह करके बहुत अच्छी तपस्या की है ना सभी ने। अच्छा लगा ना सबको। मधुबन तो मधुबन ही है, इसके लिए कहते हैं मधुबन के कण कण से तेरी याद आती है। तो बाबा की चरित्र जो भी हम यहाँ देखते हैं सुनते हैं, बाबा कहाँ रहते थे, कहाँ सोते थे, कैसे बच्चों के साथ खेलते थे, कहाँ पत्र लिखते थे, सब देखा ना। तो ये भूमि पर आते ही योग लगाना नहीं होता, अपने आप योग लग जाता, लगा ही है टूटता ही नहीं है। तो बहुत अच्छा, आप सब इतनी दूर से बिहार झारखंड कहाँ कहाँ से आप सब पहुंचे, तो इसलिए बाबा की याद ही हमारे संस्कारों का शुद्धिकरण करती है। क्योंकि हम तपस्या करते ही इसलिए हैं कि हमारे संस्कार जो आदि और अनादि संस्कार थे, कौन से संस्कार थे, जब भी वर्तमान को बाबा देखते हैं और बच्चे कंप्लेन कहते हैं बाबा मेरे पुराने संस्कार मुझे बहुत परेशान करते हैं, पुराने संस्कार ही मुझे योग में रहने नहीं देते, तो बाबा कहते बच्चे पुराने नहीं हैं, पुराने संस्कार तो बहुत श्रेष्ठ संस्कार हैं। सबसे पुराने संस्कार तो देवताओं के दिव्य संस्कार हैं, अलौकिक संस्कार हैं। लेकिन पाठ बजाते बजाते जब आत्मा अपने स्वधर्म को स्वस्वरूप को भूल गई, बॉडी कॉन्शियस में आई, तो द्वापर युग से देहाभिमान के कारण अनेक विकार प्रवेश हुए और उन विकारों के अधीन होकर के जो कर्म हमने किए वही संस्कार बन गए। संस्कार और वृत्तियां दो चीजें हैं। संकल्प जो बार बार हम करते हैं, जो बात बार बार हम रिवाइज कर लेते हैं संकल्पों में, वृत्ताकार रूप में जो घूमता रहता है अंदर अंदर, वो वृत्तियां बन जाती। और जब वही संकल्प हम बोल और कर्म में ले आते हैं, बोल और कर्म में आते आते वो संस्कार बनते जाते हैं। और जैसे संस्कार बन जाते हैं वैसे ही फिर संकल्प चलते हैं और वैसे ही बोल निकलने लगते हैं। हमारे मुख से निकलता है कि हम चाहते थोड़ी हैं, मेरी नेचर है, मेरे संस्कार है, मैं क्या करूं। बाबा कहते हैं जब तुम्हारा ये मर्जीवा जन्म हुआ, उस जन्म से इस जन्म में आ गए। कौन सा जन्म है, द्विज जन्म, ब्राह्मण जन्म। जो पिछले संस्कार थे देहाभिमान से शूद्रपन के संस्कार, दैहिक दृष्टि, दैहिक वृत्ति, देह मान में बोलना चलना, बहुत सारे ऐसे संस्कार थे जो हमारा धंधा ही हो गया था दुख देना और दुख लेना। बाबा के बच्चे बने तो बाबा ने कहा बच्चे ये संस्कार तुम्हारे नहीं है, ये मायावी संग के कारण आ गए। जिस घर में जन्म हुआ, जिस तरह की पालना मिली, जिस तरह का संग मिला, जिस तरह की पढ़ाई मिली, उसके आधार से हमारे स्वभाव का निर्माण हुआ, आदतें बन गई। और जब हम कर्म क्षेत्र पर कर्म करने में बहुत बिजी हुए और विशेष करके किसी न किसी विकार के अधीन होकर के जो कर्म किए, वो कर्म वो संस्कार के रूप में बने, वो संस्कार ही शूद्रपन के संस्कार है। अभी जब बाबा के बच्चे बने तो हम उसका शुद्धिकरण करते। बाबा तो कई बार कहते हैं इन संस्कारों का संस्कार कर दो, इन्हें जला दो। तो कई ब्राह्मण कहते हैं फिर क्या, जल जाएगा फिर दोबारा नहीं आएगा। इसलिए वास्तव में जैसे सोने में मिलावट होती है, थोड़ा थोड़ा मिक्स करते करते जब बिल्कुल 9 कैरेट पर आता है, 24 कैरेट सोना, प्योर सोना, जब मिक्स होते होते लास्ट में बहुत थोड़ा सा बचता है, मुलम्मा ऐड हो जाता, और किसी भी सुनार को अगर वो सोना देंगे, किसको आप जेवर का रूप दो या इसका कोई डिजाइन बना दो, तो पहले वो बहुत तेज आग में छोटी सी भट्टी जला करके उसमें उस सोने को गलाता है, और जब बिल्कुल गल के पानी जैसा हो जाता है तो उसमें जो मिक्स है वो अलग हो जाता है और जो प्योर सोना है वो निकल जाता, बाहर आ जाता है। और जो रियल गोल्ड होता है उसकी निशानी बोलो, सहज मोल्ड हो जाता है। उसको कैसे भी आप रूप रखा दे सकते हो, टूटता नहीं है। अगर उसमें मिक्स है और आप इसको मोड़ेंगे तो टूट सकता है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम पार्ट बजाते कर्म करते करते इतने संस्कारों में टाइट हो गए जो आत्मा इस शरीर से बाहर ही नहीं कर सकती, डिटैच नहीं हो पाती, फंस गई इसके अंदर। टाइट ड्रेस संस्कारों की है, संस्कारों की बहुत बेल्ट टाइट है। अभी तुम बच्चे इन संस्कारों का संस्कार करो। कल मैं एक स्थान पर गुजरात में था, एक बहुत सुंदर टॉपिक मुझे दी थी, अचानक दिया, बोलने लगे 3 चीजों का डिटॉक्स करना है और तीनों का डिटॉक्स होगा तो देवता बनेंगे, प्रश्न ही दिया था ऐसा। क्योंकि आजकल हेल्थ कॉन्शियस होने के कारण डिटॉक्स पर बहुत ध्यान देते हैं कि कोई भी चीज लीवर में किडनी में अगर विषाणु आ गए हैं, खान पान अशुद्धि रही है, तो उसके लिए वो डिटॉक्स कराते हैं, कोई जूस पिलाएंगे, कोई ऐसी चीज देंगे जिससे उसकी जो गंदगी है सफाई हो जाए, डिटॉक्स हो जाए। तो कहा कि सबसे जरूरी इस समय है डिजिटल की डिटॉक्स होनी चाहिए, क्योंकि डिजिटल ने सबके संस्कारों को और पक्का कर दिया। हमारे सामने जो सोशल मीडिया ने मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, अनेक साधनों द्वारा बुद्धि के अंदर व्यर्थ का कीचड़ा भर दिया, सुनते हैं देखते हैं सारा टाइम, अपनी शक्तियां उसके पीछे लगाते हैं। चलो बड़े करते थे ठीक है, आजकल छोटे बच्चे उसको खिलौना समझ रहे हैं, उसी में खेलते रहते, आंखें खराब हो जाती हैं, शरीर बेकार हो जाता, नर्वस सिस्टम बिगड़ जाता, पैसा अलग जाता है, स्वास्थ्य अलग खराब होता है, चिंतन धारा अलग परिवर्तन। कितना इसने हर एक के अंदर टॉक्सिन्स को भर दिया, गंदगी को भर दिया। अब इसको डिटॉक्स करना, इसको साफ स्वच्छ करना मेहनत का काम है, इसके लिए बहुत कंट्रोलिंग पावर चाहिए। नहीं तो जिसके हाथ में मोबाइल आ गया और आजकल का जो लेटेस्ट आ गया उसमें पता नहीं क्या क्या देखते रहते सारा टाइम, कोई कोई तो 11 बजे 12 बजे तक भी वो देखते हैं, और जब देखते रहते हैं नींद फिट जाती है, वही चिंतन चलता है, अगर नींद आ गई तो वही स्वप्न आते हैं, फिर कहते हैं मेरा योग नहीं लगता, अमृत वेला ठीक नहीं होता, मुझे बहुत बुरे संकल्प आते हैं, व्यर्थ संकल्प आते हैं। क्यों? क्योंकि मन बुद्धि को हमने इस डिटॉक्स नहीं किया, स्वच्छ नहीं किया, उसमें हम भरते गए गंदगी को। अब वर्तमान समय हर ब्राह्मण बच्चे को बाबा कहते हैं संपूर्ण सतो प्रधान बनना है, स्वच्छ बनना है। जो तुम आत्माएं अनादि और आदि काल में थी, सतयुग से लेकर के अपने आप को देखो, जितना श्रेष्ठ भाग्य जितना श्रेष्ठ रूप आपका था, आज तक आपके मंदिरों में कितनी शुद्धि से लोग पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, कितनी पवित्रता रखते हैं, गलत विचारों से भी नहीं जाते, और कोई गलत बाहर विचार होते भी हैं तो एक बड़ी सुंदर प्रथा बनाई हुई है कि मंदिर के सामने घंटा लगा देते, कि जब मंदिर में प्रवेश करो तो पहले घंटा बजाओ, जिससे वो नेगेटिविटी आपकी वायरस वहां से खत्म हो, फिर अंदर प्रवेश करो। ये भी एक साइंटिफिक है। तो बाबा ने हम सबको अपने संस्कारों की शुद्धि के लिए कई विधियां बताई, और उन विधियों को अगर हम अपनाते हैं तो सबसे पहली परहेज इस समय डिजिटल की जरूरी है, ध्यान देना, नहीं तो संकल्प कभी शुद्ध और शक्तिशाली नहीं बनेंगे, कितनी भी मेहनत करो। आज योगी जीवन योगी नहीं रही, कई बाबा के बच्चे योद्धे बने हुए हैं, युद्ध कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बाबा ने सिखाया है सहज योग, लेकिन वो सहज योग उनके लिए मेहनत वाला, सहन करने वाला योग बन गया। हम सब ध्यान दें, जो भी ऐसी मन की बुद्धि की खुराक है वो बहुत स्वच्छ हो, बहुत अच्छी सात्विक हो। अगर वो खुराक अंदर अच्छी जा रही है तो नेचुरल है उसी अनुसार संकल्प, बोल और कर्म होंगे। खुराक ही गलत है, मन और बुद्धि का आहार ही गलत है, तो कितनी भी परहेज करो संस्कार शुद्धिकरण नहीं होगा। कितना भी योग लगा लो लगेगा ही नहीं पहले तो। दूसरा है आहार के का डिटॉक्स, तो उस पर बहुत अच्छा चिंतन, बहुत अच्छी बातें निकली कि वर्तमान समय हमारे ब्राह्मण परिवार में भी जो हम लोगों के इतने स्ट्रिक्ट कायदे थे भोजन के, हम कहीं पानी भी नहीं पीते थे, और आजकल प्रचलन में आ गया है, ये तो सब अनटच है, फैक्ट्री का बना हुआ, इसमें किसी का हाथ नहीं लगा है, खाने में क्या हर्ज है, और खा रहे हैं। एक मिसाल बताया कि एक बार मैं दिल्ली से इधर आ रहा था ट्रेन में, एक ही डब्बे में चार पांच हमारे बीके ही बैठे थे, डॉक्टर्स थे, मधुबन आ रहे थे, तो मेरे पास तो अपना भोजन था, तो मैं जब भोजन निकाला खाने लगा तो हमने कहा भाई लो आप लोग भी आओ सभी, थोड़ा थोड़ा खाओ प्रसाद के रूप में। तो मेरे कहते भाई जी आप खा लो, हम लोग तो जैन फूड खा लेंगे। जैन फूड क्या होता है? मैंने नाम नहीं सुना था पहले। जैन फूड कोई अलग होता है क्या? तो जैन फूड के नाम पर बीके उसमें फंस गए जाकर के, कि उसमें लहसुन प्याज नहीं होता। केवल लहसुन प्याज की मना किया क्या बाबा ने? या बनाने वालों के विचारों की शुद्धि कितनी चाहिए, उनके विचारधाराएं कैसी हैं, उनका जीवन कैसा है, उनके संस्कार कैसे हैं। अगर उनके विचार अशुद्ध हैं और उस तरह से कोई स्वार्थ के बस, कोई ईर्ष्या के बस, कोई पैसे के कारण, कोई किसी कारण से बिना नहाए धोए, बिना कोई स्वच्छता के आपको बिना लहसुन प्याज का बना के दे रहा है, क्या होगा? आपका मन शुद्ध हो जाएगा, आपका योग लगेगा। जैसा अन्न वैसा मन बन रहा है, मन की अशुद्धियां बढ़ती जा रही हैं, और हम समझते हैं खाना पड़ेगा ना, बड़े अच्छे रूप में बोलते भाई जी खाना पड़ता है, हम लोग ऐसे रहते हैं, कौन देगा, क्या करेगा। कमजोर संकल्पों का तो कोई इलाज नहीं है। अगर संकल्पों में दृढ़ता है, शक्ति है, तो संस्कारों को बदला जा सकता है, शुद्ध बनाया जा सकता है, नहीं तो संस्कार ऐसे सीधे नहीं सुधरने वाले हैं। संस्कारों के लिए कभी कभी हमारे जगदीश भाई जी ने बड़े रमणीक क्लास कराते थे, एक लेख भी उन्होंने लिखा था, संस्कार ऐसे हैं जैसे कुत्ते की पूंछ। कुत्ते की पूंछ कैसी होती है? तो एक व्यक्ति ने एक बार सोचा कि इसको हम सीधा करके छोड़ेंगे। उसने एक पाइप लिया और पाइप के अंदर वो पूंछ को डाल दिया कि एक महीना दो महीना रहेगी पाइप के अंदर, फिर अपने आप सीधी हो जाएगी। लेकिन जब वो पाइप निकाला गया फिर वो टेढ़े की टेढ़े। हम सबको बाबा कहता है आपको इस पाइप में तो हमने डाल दिया, ब्राह्मण जीवन में तो आ गए, लेकिन वो पूंछ जो है संस्कारों की टेढ़ी रहे। क्रोध नहीं जाता, कितना भी ज्ञान हो चेक करना, कहीं न कहीं ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर भावना, बदला लेने की भावना, एक दूसरे को नीचा गिराने की भावना, कैसे कैसे संस्कार आत्मा के बन गए हैं। और उससे खुद भी परेशान है, दूसरे भी परेशान है, लेकिन उस परेशानी को महसूस नहीं करते। और बिना महसूसता के संस्कार चेंज हो सकते हैं क्या? चार चीजें चाहिए। अगर कोई को अपने संस्कार चेंज करने हैं, उनको शुद्धिकरण करना है, तो मैं आज आपको चार बातें सुनाता हूं, ध्यान देना। बाबा की मुरलियों की अच्छी स्टडी। क्यों? क्योंकि मुरलियों में बाबा हमें समझ देता है, राइट क्या है, रांग क्या है, कौन से संस्कार देवताओं के संस्कार हैं, कौन से संस्कार असुरों के संस्कार हैं। और आप सबका लक्ष्य जब इतना ऊंचा है, हमें ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना है, तो जब लक्ष्य इतना महान है तो लक्षण भी वैसे ही होने चाहिए। लक्ष्य की पूर्ति ऐसे नहीं होती, हम कहें हम देवता बनेंगे, लेकिन चलन, व्यवहार, खान पान, रहन सहन किस प्रकार की है। 10 साल, 15 साल, 20 साल से ज्ञान में चलते हैं, कहाँ तक वो प्यूरिटी, वो रॉयल्टी चलन में, दिव्यता, अलौकिकता दिखाई देती है, या वैसे के वैसे ही है, जैसे लोग हैं। जैसे मंदिर में प्रसाद बटने लगे तो टूट पड़ते, हमको दो, आगे आगे भागते। ऐसे भी यहाँ टोली बटने लगे तो एक दूसरे पर गिरते हैं। संस्कारों में रॉयल्टी कहाँ है? भोजन बट रहा है, अरे मिलेगा ना भाई, थोड़ा 5 मिनट धैर्यता से लाइन में आ जाओ, मैं पहले, धक्का धुक्की, एक दूसरे गिरा के आगे जाते हैं। कई प्रकार के अनरॉयल संस्कार, जो रॉयल थे, चलो रॉयल अभी नहीं राजाई रही, लेकिन राजाई घराने हैं अभी भी। और उस राजाई घराने के अंदर जो जन्म लेते हैं, बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनके संस्कार देखो आप। वो किसी की चीज पर ऐसे नहीं कहेंगे मैं उठा लूं, मैं ले लूं, मैं मांग लूं, हाथ नहीं आगे करते, बहुत रायल रहते हैं। आप कोई चीज दोगे नहीं। उनका देखना, उनका चलना, उनका खाना, हर चीज में उनकी रॉयल्टी दिखाई दे रही है, वो रॉयल फैमिली है उनकी। और बाबा कहते हैं तुम इतने रायल मेरे बच्चे हो, सबसे ऊंचे से ऊंचे पूज्य देवी देवताएं हो, उनसे ऐसा रायल तो दुनिया में कोई है ही नहीं। और वही आत्माएं तुम जन्म लेते लेते लास्ट में आई हो, तो मिक्स हो गए जो अनरायल संस्कार, थोड़ा सा उसको डिटॉक्स करो, स्वच्छ बनाओ। और उसके लिए चाहिए पहली में समझ, मुरली से समझ मिलती है। और जब समझ मिल जाती है तो एकांत में बैठ करके महसूस करो मेरे अंदर क्या है। कई बार हम मुरली सुनते हैं और सुनते सुनते बड़ा अच्छा अंदर अंदर आता, ये जो मुरली की पॉइंट है ना, ये फलाने भाई के लिए बहुत अच्छी है, ये फलानी दीदी के लिए बहुत अच्छी है, ये फलानी बहन के लिए बहुत अच्छी, मेरे लिए है, शायद ही कोई महसूस करे कि मेरे लिए भी है। मुझे इस बाबा की बात को अपने जीवन में धारण करना है, ये समझ चाहिए। बाबा ने हमें पढ़ाया है, हम नोट्स लेते हैं, हम समझते हैं ये नोट्स बड़े अच्छे हैं, हम फलानी बहन को भेज देते हैं, फलाने भाई को भेज देते हैं, ठीक है, इसके लिए था क्या पढ़ाई? सेवा का साधन था, अच्छे बात है, लेकिन वास्तव में जो कुछ बाबा की शिक्षाएं हमें मिल रही हैं मुरली के माध्यम से, वो हमारे ही परिवर्तन, हमारे संस्कारों के शुद्धिकरण के लिए हैं। लेकिन उस समझ के बाद महसूसता चाहिए, और महसूसता ऐसे नहीं आती जब तक हमारी आंख जो है दूसरों को देख रही है, ये क्या करता है, वो क्या करता है, यहाँ क्या होता है, वहां क्या होता है। अगर हम सब अपने आप को देखना सीख जाएं, एक और रमणीक मुरली बाबा की चली है कि मेरे बच्चों की नजदीक की नजर बहुत कमजोर है और दूर की नजर का चश्मा बहुत तेज है, फटाफट दिखाई देता है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, लेकिन अपना नजर पता ही नहीं चलता मेरे अंदर भी कुछ है। तो इसलिए जब हम स्वपरिवर्तन, संस्कारों के शुद्धिकरण के लिए योग करते हैं, तो पहले बहुत अच्छी महसूसता चाहिए। मेरे अभी तक भी ऐसे कौन कौन से संस्कार हैं जो मेरे इस ब्राह्मण जीवन में, इस योगी जीवन में विघ्न रूप है, रुकावट डाल रहे हैं, इसके लिए एकांत में बैठो, मैं दादी जी का लास्ट में पुरुषार्थ सुनाता हूँ, सुना होगा आप लोगों ने। जब दादी जी 2-3 साल बिल्कुल सब बातों से डिटैच हो गई, न्यारी रहने लगी, आंख भी बंद कर लेती थी, खुलती नहीं थी, लेकिन हम लोगों की सेवा ऐसी थी जो रोज दादी से मिलना होता था। तो माउंट आबू में हम रहते थे और दादी नीचे रहने लगी थी शांतिवन में। तो कहती थी, आप लोग शाम को जाते हो, जब सुबह आना तो अपने कार्य में जाने के पहले दादी से मिल के जाना, ऐसे नहीं जाना। तो एक दिन हम आए, ऊपर से गए नीचे, दादी ऐसे सोफे पर अकेले बैठे, कोई नहीं था, आंख बंद करके नींद नहीं थी, बहुत मगन अवस्था थी, जिसको हम कहें एकदम कोई खो जाए ना, ऐसे थी। तो मैंने चेड़ना थोड़ा सा आवाज में आना, समझा ठीक नहीं है, तो मैं जा करके, बड़ा सोफा था, दादी के बाजू में बैठ गया और बैठ करके मैं दादी की तरफ ऐसे देखता रहा, कर क्या रही है, लेकिन जरा भी कोई हलचल नहीं है, खोई हुई जैसे आत्मा है। काफी समय हो गया, तो थोड़ा सा मैंने कहा कि मुझे तो बात करके जाना है, तो मैंने ऐसे थोड़ा सा टच किया हाथ, तो दादी बहुत प्यार से आंख खोल के बोलती, अच्छा तुम आ गए, कुछ कहना है, कुछ कहना है। तो मैं कहना तो भूल गया क्या कहना है, इतना प्यार से पूछा। तो मैंने कहा, दादी अभी आप क्या कर रही थी, मैं बहुत देर से आपके बाजू में बैठा हूं, आपको पता नहीं चला। तो कहती है, बताऊं दादी। इतना मन से दिल से बात कर रही थी कि आज मैं, बाबा कहता है अपने हीरे पर कौन से दाग हैं, उन दागों को देखो, चेक करो। तो मैं आज आत्मा रूपी हीरे को इस हथेली पर रख करके और बहुत देर से देख रही थी, इसमें अभी भी कोई दाग है क्या। और देखते 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 जब मुझे कोई दाग नहीं दिखाई दे रहा था, तो मेरे सामने बाबा आए और बाबा कहते हैं, बच्ची तुम क्या देख रही है। तो मैंने बाबा को सुनाया कि बाबा सोच रही हूँ मुरली में आता है, अपने हीरे का दाग देखो, उसको निकालो। तो बाबा कहता, बच्ची इस हीरे में अभी कोई दाग नहीं है, ये बेदाग हीरा है। और ऐसे कह के दादी चुप हो गई कि ये कुछ और नहीं उठ सोचने लगे, क्योंकि बेदाग हो गया तो ध्यान नहीं रह सकता है ना। सृष्टि पर अगर कोई बेदाग हो जाए, बिल्कुल संपन्न हो जाए, कर्मातीत स्थिति में आ जाए, तो बाबा कहता है जो संपूर्ण स्टेज है आत्मा की, उस विकारी सृष्टि में सब ज्यादा नहीं रहेगी, शरीर छोड़ देगी। तो मुझे तो टच हो गया कि अभी दादी तो संपन्न बन गई, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला, बस ऐसे ही दादी दृष्टि देती रही देती रही। तब से लेके मेरा एक ध्यान गया इस बात कि हम सभी बाहिमुखी तो बहुत हैं, मुरली सुनाना, क्लास करा देना, भाषण कर लेना, कई चीजों में बहुत होशियार हैं, प्रवीण हो गए, लेकिन कभी एकांत में बैठ करके अंतर गुफा में मैं अपने हीरे को देखूं, अभी तक भी मेरी वैल्यू क्या है इस हीरे की, कोई दाग है किसी रूप में, सूक्ष्म रूप में, चलो बड़े रूप में हमने काम विकार को जीता, हमने गुस्से में क्रोध में आके अब शब्द नहीं बोलते, हमें लोभ वृत्तियां भी नहीं है, हम समझते हैं जो है जितना है बहुत बाबा ने मुझे दिया है, हम किसी में फंसे हुए भी नहीं है, अटैचमेंट भी ऐसी नहीं है, ठीक है कराना करावन हार बाबा कह रहा है इसलिए करा रहा है, मुझे अहंकार भी नहीं आता, लेकिन उसकी जो रचना है बड़ी सूक्ष्म है और वो इतने गहरे दाग हैं, वो जल्दी नहीं निकलते। जब तक कोई नहीं बहुत अच्छी तरह से एकांत में बैठ करके अपने हीरे पर ध्यान नहीं दिया, तब तक वो दाग निकाले नहीं जा सकते। पहले पता तो चले गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये देवताओं के लक्षण नहीं है, ये ब्राह्मणों के अंदर भी विघ्न है, रुकावट है, महसूस करो, बैठ जाओ ऐसे अकेले में, योग लगा रहे नहीं, योग नहीं लगाओ, आत्मा को देखो, ईर्ष्या है, नफरत है, थोड़ी इच्छाएं हैं मान की, नाम की, शान की, पद की, पोजीशन की, बहुत गहरी बहुत ऊंची मंजिल है और बहुत गहरा पुरुषार्थ है। ठीक है, हम चल रहे हैं साधारण रूप में, जो बनना होगा बन जाएंगे, बाबा जो बनाना होगा बना देगा, अलबेलेपन की भाषा तो ठीक है। लेकिन वास्तव में जब हम सब इतना समय देते हैं, इतना इंटरेस्ट रखते हैं, बाबा की मुरलियां सुनते हैं, योग पट्टियां करते हैं, तो हमें लक्ष्य रखना चाहिए कि ऊंचे से ऊंची स्थिति बने। पद क्या मिलेगा वो तो बाबा जाने, वो तो ठीक है जो मिलेगा, लेकिन वर्तमान समय जो बाबा हमें संपन्न संपूर्ण फरिश्ता बनाना चाहता है, उस फरिश्ता बनने में, देवता बनने के पहले कौन से ऐसी रुकावटें हैं, कहाँ कहाँ मन बुद्धि भटकता है, खींचती है आत्माओं को, कई चीजें आकर्षण करती हैं, देखने की, सुनने की, खाने की, बोलने की, बहुत चीजें आकर्षण करती, एकांत में बैठ करके महसूस करो, और जब लगता है ये ठीक नहीं है, इसको मुझे चेंज करना है, तो क्या करेंगे, उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। अब तपस्या के नाम से लोग डर जाते हैं, पता नहीं, एक टांग पर खड़ा होना पड़ेगा, जागरण करना पड़ेगा। बाबा कहता है वो तपस्या तो हठ योगियों की है, ऐसी तपस्या मैं नहीं सिखाता। बाबा ने हम जब सबको तपस्या के तीन अर्थ बताए हैं, वो बड़े सरल अर्थ है। हम सबकी जीवन तपस्वी जीवन है। हम तपस्या माना कोई बैठ करके दो घंटा, छह घंटा, आठ घंटा विशेष योग करेंगे क्या? बाबा कहते तपस्या का अर्थ है दृढ़ता संपन्न संकल्प। जो संकल्प करो, जैसे लौकिक में एक संकल्प दे, जिद्दी है ये, जिद्दी नहीं है, जिद्द तो असुरी संस्कार है। लेकिन संकल्प ब्राह्मण जीवन में जो रुकावटों वाली बातें ठीक नहीं लगती हैं, उनके लिए हम दृढ़ता संपन्न संकल्प करें, कुछ भी हो जाए, ये नहीं सोचना है, ये नहीं देखना है, ये नहीं बोलना, इधर नहीं जाना है, ये नहीं खाना है, दृढ़ता संपन्न संकल्प तपस्या है। और वो तपस्या संस्कारों का शुद्धिकरण करेगी, अपने आप संस्कार ठीक हो जाएंगे। मान लो आप संकल्प कर लो 15 दिन के लिए, मैं यहां से जाने के बाद किसी का भी पर चिंतन नहीं करूंगा। बाबा ने मना किया है, पर चिंतन पतन की जड़ है, बच्चे तुम स्वचिंतन करो, अपनी घोट तो नशा चढ़े, दूसरा क्या करता है करने दो, जो करेगा वो जाने, उसके कर्म जाने, मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं सोचना है, मुझे 15 दिन कम से कम अंतर्मुखी बन करके स्व का चिंतन करना है, पर चिंतन नहीं करना है। आप देखेंगे बहुत सारा समय बच जाएगा, बहुत सारी एनर्जी बच जाएगी, क्योंकि जब बैठते हैं ना आपस में, दो चार जने मिल गए, फोन पर इधर उधर, फलाना यह करता, वहां ऐसे होता, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े अच्छे क्लास कराते हैं, मैं उनके जीवन को जानता हूं, बस शुरू हो गया परपंच, पर चिंतन, पर दर्शन और परपंच, सब अशुद्धियों का कारण जड़ वहां से शुरू होती, देखने की नजरिया तेज चेंज हो जाता। संकल्प करो, दृढ़ता से संकल्प करो, हम नहीं करेंगे, कुछ समय के लिए हम मन और मुख का मौन रखेंगे, चलो हम 24 घंटे नहीं रख सकते हैं, ठीक है, हमारी कारोबार ऐसी है, व्यवहारिक जीवन ऐसी है, जो हम पूरा समय मुंह भी नहीं बंद कर सकते, लेकिन कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा हम मन के संकल्पों को कंट्रोल करेंगे, नहीं सोचेंगे इधर उधर की बात। मन शांत नहीं होता है, संकल्प सदा ही चलते हैं, कोई गुब्बारे को कब तक दबा के रखोगे, संकल्प जो सारा कल्प चलता है, आपको उसको हम बंद करें, उसको हम रोक दें, हमारी नेट संकल्प समाधि है, बाबा कहता है ये गैसा भी गलत है, जब इस बाजे के अंदर हो तो संकल्प नहीं चलेंगे क्या, संकल्प के बिना नहीं रहती आत्मा, लेकिन वो संकल्प चले जो मेरे और दूसरों के कल्याण के लिए है, जो बाबा की श्रीमत के अनुकूल संकल्प है, वो संकल्प अपने आप धैर्यवत हो जाएंगे, वो कम चलेंगे, स्पीड उसकी स्लो हो जाएगी, संकल्पों को मन को मौन में ले जाने का अभ्यास करो। एक घंटे में 5 मिनट अच्छा हम देखते हैं करके, हो सकता है करना। ये भट्टी पूरी करके जा रहे हैं ना, अभी संकल्प करके जाना, हम एक घंटे में 5 मिनट कोई भी व्यर्थ इधर उधर के संकल्प नहीं करेंगे। क्या संकल्प करेंगे? करेंगे जरूर। संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है, इसको मारना और दबाना नहीं है, इससे तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करने हैं। ये संकल्प करेंगे, मैं एक ज्योति स्वरूप प्रकाश स्वरूप आत्मा हूं, मैं लाइट हूं, मैं माइट स्वरूप हूं, मेरा स्वधर्म शांति है, प्रेम है, पवित्रता है। ये संकल्प करो, मेरा घर परम धाम है, स्वीट होम है, वहां से हम आत्मा आई है, मेरा पिता स्वपिता है, आत्मा का पिता परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु है। ये संकल्प करो और यही संकल्प आपको अच्छे अनुभव कराएंगे। बाकी दूसरे संकल्प में 5 मिनट के लिए स्टॉप कर दो, न करो, हो सकता है करके देखना। क्योंकि संकल्पों से कर्म और फल, संकल्प एक बीज है। अब बीज अगर है और उसको हमने बो दिया, डाल दिया, तो उसका वृक्ष तो निकलेगा। इसलिए ध्यान देना, बाबा ने हमारे संस्कारों की शुद्धि के लिए तपस्या सिखाई और तपस्या है दृढ़ता संपन्न संकल्प, और दूसरा तपस्या है बेहद का वैराग्य। जिन चीजों में मेरा कुछ नहीं लेना देना, क्या वैराग्य आया उससे? वैराग्य का हम दूसरा दो अर्थ समझाते बताते हैं, वैर नहीं राग नहीं, किसी से वैर नहीं है मेरा और किसी से राग नहीं है, लगाव नहीं है। अगर वैराग्य वृत्ति हमारी बन गई और वो भी बेहद का वैराग्य, लोगों को शमशानी वैराग्य थोड़े समय के लिए आता है, घर बार छोड़ के चले जाते हैं, फिर बाद में भले वापस आए पश्चाताप करके, लेकिन वैराग्य ऐसी चीज है जो तुमको त्याग करा देता है। बाबा ने हम सबको बेहद का वैराग्य सिखाया है। संसार ही असार है, क्या रखा है संसार में? हम लोग जाते हैं इधर उधर बाबा के बच्चों के पास, ये देखो वो देखो, मैं हाथ जोड़ता हूं प्लीज मुझे बाबा से बच्चों से मिलने दो, देखने के लिए साइट सीन गाड़ी में जाते हैं, देख लेंगे। देखने के लिए हम नहीं आए हैं यहाँ पर, पिछले साल अमेरिका गए, बहुत सारी साइट सीन थी। मैंने बहनों को बोला प्लीज मुझे साइट सीन में नहीं जाना, मैं इसके लिए नहीं आया हूँ। आप बाबा के जहाँ बच्चे हैं जो मधुबन में नहीं आ सकते हैं, नहीं आए हैं काफी समय से कोविड के बाद, आप उनके पास मुझे ले जाओ, मैं उनसे मिलूंगा, उनसे रूहानियत करूंगा, उनके अनुभव सुनूंगा। बहुत सारे स्थानों पर मुझे ले गए भाई बहन, टीचर्स ले गई, बेचारे 4 साल से 5 साल से आयु बड़ी हो गई है, हर साल आने वाले नहीं आ पा रहे हैं, या मुझे उनके पास ही जाना है जो बीमार हैं नहीं आ पाते बुजुर्ग। एक बूढ़े के पास में गया, बहुत बुजुर्ग था, मैं समझता हूँ 80 के ऊपर था, कमर भी झुक गई थी, अकेले रहता था। और बहन ने उसको बीच बीच में भोजन पहुंचा देती, कोई टोली प्रसाद दे आती थी, लेकिन अकेले रहना, एक घर बड़ा मिल गया गवर्नमेंट की तरफ से, फ्री मिल गया, उनको पैसा भी मिलता है गवर्नमेंट देती है, लेकिन वो रहता अकेले। और जब हम लोग पहुंचे, 5-7 भाई बहने हम गए उसके पास, और पहचान तो पता तो चल जाता है, अरे राजू भाई मुरली वाला, राजू भाई मुरली वाला करके खड़ा हो गया, बाबू जी बैठो। उससे जब मैंने बात किया, मैं आपको क्या बताऊं उसका अनुभव, अकेले था, कहता है भाई जी हमने क्या, बाबूजी कैसे दिनचर्या आपकी बीतती है, क्या क्या करते हो? मैं एक मिनट भी फ्री नहीं रहता हूं, देखो हमारे पास लैपटॉप रखा है, आप वरदान भेजते हो, स्लोगन भेजते हो, मैं इसको पढ़ता हूं, मनन चिंतन करता हूं और फिर सबको मेल भेजता हूं। और बहने हमारे को जो कोर्स करने आते हैं सेंटर्स पर, बहने कहती हैं बूढ़े बाबा के पास चले जाओ, कोर्स करा देगा। मेरे पास कोर्स कराने वालों की लाइन लगी रहती, कितने लोगों को उसने कोर्स कराया होगा, ज्ञान में चला दिया बैठे बैठे। हमने कहा आपको ये सफाई कौन करके देता है? बड़े प्यार से कहता है बाबा करता है ना, बाबा कैसे आता है करने के लिए? तो उसके पास मशीन थी, और जैसे वाकर लेके चलते हैं ऐसे वो मशीन ऐसे लेता, तो गलीचा तो बिछे हैं सब जगह, आराम से घूमता, ऐसे चक्कर भी लगा लेता और मशीन से सारा घर साफ कर लेता है, खुद ही साफ करता था, कोई नहीं काम करने वाला। भोजन कैसे बनाते हो? अरे बाबा बनाता है। मैं खड़ा हो जाता हूँ, जो होता है ले आता हूँ मार्केट से। मैं कौन ले आता, मैं ही जाता हूँ। छोटी सी गाड़ी थी, कहता है अनुभव सुनाते सुनाते कि मैं एक दिन गाड़ी में गया और सामान लिया, 150-200 डॉलर का सामान लिया, और लेकर के मैंने जब अपना कार्ड दिया कि ले लो, तो वो जो बहन थी सामान दिया उसने, कहती है बाबूजी मैं आपसे पैसा नहीं लूंगी। क्यों नहीं लेंगी, हमको तो गवर्नमेंट देती। नहीं नहीं, आपके साथ वो गॉड है, वो गॉड मुझे कह रहा है इससे पैसा नहीं लेना। कहती मेरे से एक, मैं कह रहा हूँ भाई मेरे को मिलता है गवर्नमेंट से, ले लो हम ऐसे नहीं लेंगे। कहती नहीं नहीं, आपके साथ कोई शक्ति है, गॉड है, वो मुझे कहता है इसे नहीं लेना, मैं नहीं लूंगा। नहीं लिया उसने एक रुपया भी, सब फ्री दे दिया। ऐसे ऐसे विचित्र अनुभव बाबा के बच्चों की, क्या निश्चय, क्या भावनाएं, कहाँ कहाँ कोने कोने में बाबा के बैठे तपस्या कर रहे हैं बच्चे। यहाँ तो देखो ठीक है चल रहे हैं, गए क्लास में तो गए, नहीं गए नहीं गए। और आजकल की माया ने ऐसा पंजे में फंसाया है, हम तो ऑनलाइन मुरली सुनते हैं, सेंटर पर नहीं जाते, क्लास में नहीं जाते। जैसे बाबा कहते हैं ना, ऐसा अलवेलेपन अलवेला बनाएगी, थप्पड़ मारेगी, मुंह ही फेर देगी। इस समय तो कई ब्राह्मणों का मुंह माया ने फेर दिया, मुरली क्लास नहीं करते, सेंटर पर नहीं आते, घर में बैठ के ऑनलाइन सुन रहे हैं। कैसे सुने, ना नहाया है ना धोया है, बैठे बिस्तर पर मुरली लगा दिया रहे। चल रही है, कोई टीवी पर देख रहा है, कोई मोबाइल में देख रहा है। बाबा कहता बच्चे सावधान, संस्कारों का शुद्धिकरण करना है। संस्कार ऐसे शुद्ध नहीं होते, अच्छे वातावरण में जाओ, अच्छे संग में बैठो, बाबा की शक्तियां लो, करंट लो, सकास लो। दुनिया से वैराग्य है, बाकी परिवार से अपनी पढ़ाई से थोड़ी वैराग्य है। संसार असार है, उसमें कोई सार नहीं है। जितना वैराग्य वृत्ति होगी, न खाने का, न घूमने का, न देखने का, कोई ऐसा शौक मौज नहीं है। जो बाबा कराना है, आप इतने बाबा के राइट इंस्ट्रूमेंट बनो। मैं बार बार बाबा को कहता हूँ, बाबा मुझे और कुछ नहीं आता, आप मुझे यूज कर लो, बस जितना यूज करना कर लो, जो शरीर में शक्ति आपके लिए है, मुझे क्या करना। और बहुत अच्छी तरह से बाबा यूज करा। मेरे को 10 मिनट आधा घंटा भी फुर्सत नहीं रहती, सुबह से शाम तक बाबा की सेवा में लग गया। बाबा लगा रहा है तो हम कहते हैं हमारा बचपन बड़ा अच्छा था, मधुबन में आए, पहाड़ों पर चलो घूमो, इनको पिकनिक कराओ, अभी इस उम्र में आकर के ये सेवा, इतने निमंत्रण। अभी मैं कल आया हूँ, फिर कल जा रहा हूँ रायपुर छत्तीसगढ़, वहां से आओ, ये रिकॉर्डिंग करनी है भाई जी, ये करना है। कल दादी का इंटरव्यू, दादी प्रकाश मणि का इंटरव्यू रिकॉर्ड करना, मुरलियों का रिकॉर्डिंग है, अव्यक्त इशारों का रिकॉर्डिंग है, यहाँ क्लास वहाँ क्लास। ठीक है बाबा मुझे यूज कर, मैं थकता नहीं हूँ, जो कराने वाला करा रहा है, हम क्या है, बाबा यूज करें। लेकिन ठीक यूज तब करेगा जब इसमें जरा भी कोई व्यर्थ बातें ना, व्यर्थ को अवॉइड करो, नहीं चाहिए। इधर बैठे उधर बैठे क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं हम संगम का? समय और संकल्प इतना अमूल्य खजाना है, और उसी खजाने को हम इधर उधर की बातों में व्यर्थ बातों को बचाओ। संस्कारों के शुद्धिकरण के लिए तीसरी बात, एक दृढ़ता संपन्न संकल्प, दूसरा बेहद का वैराग्य, और तीसरा एक बाबा, दूसरा न कोई। कोई भी साधारण व्यक्ति हो, बहुत विशेष हो, धनवान हो, रूपवान हो, गुणवान हो, चाहे कोई कैसा भी हो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बाबा मिला, संसार मिला। आप सभी दीदी के मास में बैठे हैं, दीदी मनमोहिनी, शायद कोई कोई ने देखा होगा, कंचन देखा, नहीं देखा, 83 के पहले वाले कोई बैठे हैं भाई, 83 नहीं, एक माता, हाथ उड़ा, तुम थे नहीं, एक दो होंगे। 83 28 जुलाई को दीदी मनमोहिनी अव्यक्त हुई, और दीदी मनमोहिनी आप शायद सुना होगा, यज्ञ की एक बहुत नंबर 1 पिल्लर थी, पिल्लर, पिल्लर कहते हैं मजबूत पिल्लर, और बाबा ने उन्हें हर बात में आगे रखा था शुरू से ही। जब कराची में हंगामे हुए, सबसे पहले हंगामा उन्हीं के घर से हुआ था, क्योंकि वो शादी कर लिया था, शादी हो चुकी थी। शादी करने के बाद ज्ञान मिला, और ज्ञान मिलते ही संपूर्ण निश्चय बुद्धि हो गई, मैं पवित्र रहूंगी। तो बड़े बड़े बहुत बड़े घर में शादी किया था उनके परिवार वालों ने, वो सारे समाज विरोधी हो गए, ये कौन सा ज्ञान है। तो वो भाग के अपने घर में आ गई, लौकिक में आ गई। और जब लौकिक में आई तो माँ, उसकी छोटी बहन, चचेरी बहन ब्रशांता दादी, और उनकी माँ, उनकी छोटी बहन, छह लोग घर से भाग गए, कराची आ गए, हैदराबाद से भागे। और जब बाबा के पास आए तो बाबा ने कहा, तो बच्ची बहुत हंगामा हो जाएगा, तुम कैसे आ गए, पत्र लाओ, पत्र के बिना नहीं रहना। तो दीदी तो बड़ी युक्तियुक्त थी, लौकिक में पढ़ाई नहीं किया था एक क्लास में, लेकिन दीदी की जो धारणाएं थी, जो बाबा से प्यार था, उनका नाम ही लौकिक में गोपी था, और वो गोपी का ऐसे मगन, इधर लग गई लगन, क्या करेगा कोई विघन। तो दीदी इतना निर्भय, इतनी निश्चिंत, सबका सामना करके आई। और जब आ गई तो बाबा ने कहा, तुम ऐसा करो, जो माताएं आई हैं इनको सिलाई स्कूल खोल दो, इनके लिए माताओं को सिलाई सिखाओ। तो उनको हेड बना दिया दीदी को सिलाई स्कूल का, और वही ट्रेनिंग देती थी। फिर जब आबू में आए तो बाबा ने उनको ही भेजा, जाओ, क्योंकि उनके बड़े परिवार वाले, पैसे वाले सब बॉम्बे में थे, जसलोक हॉस्पिटल उनके भाई का। तो दीदी को ही भेजा बाबा ने आबू में। आबू में दो दिन घूमती रही, कोई स्थान इतना बड़ा नहीं मिल रहा था जिसमें 350 लोग वहां से आए और रहें। तो कोई लास्ट में भरतपुर राजा की कोठी दिखा दी यहाँ बस अड्डे के पास। तो उसको देखा कांच से, बड़ी अच्छी लगी, और बाबा को फोन किया, बाबा बहुत अच्छा स्थान है, हम लोग यहाँ रह सकते हैं एक साथ। बाबा ने कहा ले लो। दीदी उसके लिए भी निमित्त बनी आबू में सबको लाने में भी। फिर उसके भाई ने देखा बहुत बेगरी पार्ट शुरू हो गए यहाँ पर, एकदम सब जो लाए थे खा पी के खत्म कर दिया, कुछ नहीं रहा। तो माँ उसकी तो बहुत रायल थी, और बाबा उसको क्वीन कहता था, क्वीन मदर, और वो क्वीन तरह रहती थी। तो उसके बच्चे तो थे, सबको लगता था कि मम्मी को इतनी तकलीफ होगी, और सबसे दूसरी माता थी रतनवी दादी की मम्मी, देवी माता, और ये दोनों बहुत बड़े घर की थी, माना बहुत पैसे वाले लोग थे। तो दोनों ने, उनके बच्चों ने कहा कि हम बॉम्बे में तुमको मकान लेके देते, भले जब तक आबू में रहना रहो, लेकिन मकान हम बॉम्बे में लेके देते। कोलाबा में दोनों ने बड़े बड़े अच्छे घर लेकर के दिए, एक दीदी क्वीन मदर के लिए, और एक दादी रतन मोहिनी और उनकी मम्मी के लिए। ऐसे करके बेगरी पार्ट में भी आगे रही हो सब चीजें, लौकिक से पैसा कराने में भी आगे रही, उनका समर्पित कराया। और जब मम्मा अव्यक्त हुई 65 में, 24 जून 65 में, तो दीदी दिल्ली में सेवा करती, दिल्ली कमला नगर का सेंटर दीदी के हाथ में ही था, जिसमें से जगदीश भाई ज्ञान में निकले, जिसमें से हमारी कुंज दादी वहाँ टीचर थी। कुंज दादी टीचर थी, कोर्स कराती, मुरली सुनाती, दीदी कभी कोर्स नहीं कराया, मुरली नहीं सुनाई, लेकिन उनकी जो हैंडलिंग थी, उनकी जो एक ईश्वरी नियम मर्यादाओं में, बाबा में प्यार और दृढ़ता थी, उससे उन्होंने कई स्टूडेंट को समर्पित कराया। दीदी कमला नगर में रहती थी, लेकिन जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो बाबा ने दीदी को इस स्थान पर बिठाया, यहाँ ही रखा, कमरा है यहाँ पर बाबा के बाजू में ही कमरा, अभी तो ऑफिस बना हुआ है, लेकिन उसमें ही दीदी रही। और मुझे 11 साल दीदी की पालना मिली, साथ रहा मैं। एक एक नियम क्या होते हैं, एक वृत्ता स्थिति क्या होती है। कभी मैं इधर उधर की बातें टाइप करके दीदी के पास ले जाऊँ, अरे तुम ये क्या टाइप करके ले, साकार बाबा की मुरली टाइप कर, उसके प्रश्न उत्तर निकाल, बहुत अच्छे प्रश्न उत्तर निकालती, खुद निकालती थी, और मुझे बार बार कहती ये देख कितना अच्छा ये टाइप करके लिया, ये निकाल के टाइप करके। तो दीदी के साथ रह करके बहुत अच्छा पाठ बजाया, लेकिन दीदी की जो विशेषता थी, एक वृत्ता, एक बाबा, दूसरा न कोई, कोई किस्सा भी हो दीदी ने बाबा एक बल एक भरोसा, कोई भी परीक्षाएं आई कोई देहधारी को याद नहीं किया, बाबा बैठा है, बाबा बैठा है, बाबा बैठा है। तो बाबा का यज्ञ दीदी और दादी ने मिलकर के कहां से कहां पहुंचाया और हम सबके संस्कारों की शुद्धिकरण के लिए एक और विधि बताई। तीन विधि तो बता दी, एक चौथी विधि बताई कि अगर तुम्हें अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है तो अपने शिक्षक, अपने टीचर खुद बनो। कोई भी टीच करेगा आपकी बुद्धि में कुछ नहीं जाएगा, अपनी अपने को पढ़ाओ। बाबा ने मुझे क्यों चुना, इतनी सारी दुनिया पड़ी हुई है, आपके बिहार में इतने लोग हैं, आपको ही क्यों चुना, पूछा कभी अपने आप? मुझे, मुझ पर बाबा की नजर पड़ी, जरूर मैंने कोई स्पेशल भक्ति की होगी, कोई स्पेशल बच्चे होंगे ना, तब तो भगवान ने मुझे चुना, बच्चा बनाया, इतनी ऊंची शिक्षाएं दी, पढ़ाया, इतनी श्रेष्ठ मत दी, सतगुरु बन करके हमें गाइड किया है, वरदानों से हमारा श्रृंगार किया है, इतनी ऊंची जीवन दी है, संगम पर ही इतना रायल बना दिया, देवता तो बाद में बनेंगे, ब्राह्मण कितने ऊंचे हैं, कितने महान हैं, कितने स्वच्छ हैं, कितने ईमानदार हैं, कितने दूसरों के साथ मिलनसार हैं, कैसी जीवन बाबा ने हम बच्चों की बनाई, अपने से पूछो। ये छोटी छोटी बातें जब ऊंचाई पर होते हैं ना तो ऐसे लगता है, जैसे प्लेन में जाओ तो नीचे ऐसे लगता है बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े पहाड़, छोटे छोटे ऊंचे जैसे तुम्हें दिखाई देता है। जितना हम अपनी ऊंचाई पर रहेंगे, अपने ऊंचे सोमान में रहेंगे, उतना ये सब बातें, संस्कार ऐसे लगे तो ठीक नहीं है, छोड़ो इनको, बहुत सहज हो जाएगा। कोई कठिन मेहनत करने का पुरसार नहीं है तो बहुत कड़ा संस्कार है। कई ऐसे निराश होते हैं, पता नहीं मैं देवता बनूंगा या नहीं बनूंगा, बाबा तो कहता है, अरे बाबा त्रिकालदर्शी है, ऐसे थोड़ी कह रहा है, वो हमारे भविष्य का दृष्टा है, भृगु ऋषि है, ब्रह्मा बाबा हमारा भृगु ऋषि है, हमारे जीवन कहानी को जानता है, और शिव बाबा तो त्रिकालदर्शी है ही, वो जानता है मैंने इन्हीं बच्चों को तो बनाया था, वे दूसरे थोड़ी बनने वाले हैं, और यही बनेंगे। वर्तमान में भले कोई हिसाब किताब है, कोई संस्कार है, कोई बातें हैं, बाबा ने हमारे में इतनी उम्मीदें रखी और हम ना उम्मीद हो जाएं, अपने में उम्मीदें कभी नहीं छोड़ना, आशाओं का दीपक सदा जगा करके रहो, हम बन के दिखाएंगे, हम विजयी थे, विजयी हैं, विजयी बन करके रहेंगे, विजय माला हमारी ही यादगार बनी हुई है, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए कभी भी कोई बात आए मनसा में आती है, कभी कभी वाणी में भी आ जाती है, ध्यान दो कर्मणा में ना आए, बहुत अटेंशन रख करके विजयी बन के दिखाओ। बाबा का हाथ है, साथ है, परीक्षाएं आएंगी, पढ़ाई है तो परीक्षाएं होंगी ही, ऐसा कोई नहीं कह सकता मेरे आगे कोई पेपर ही नहीं आएगा, है ऐसा कोई जिसके आगे कोई पेपर ही ना आया हो? क्रास करना ही पड़ेगा, पेपर के बिना क्लास आगे बढ़ेगा ही नहीं। और दादी जी हमेशा एक बात कहती थी, भाई उस स्टूडेंट के पेपर तो 3 मास, 6 मास, 9 मास, साल में आते, और मैं तो पेपर हाल में ही बैठी हूँ, इधर मुरली सुनते हैं, बाहर जाते पेपर लेना शुरू कर देते हैं लोग, क्योंकि वही पढ़ाई है हमारी, कैसे संग में रहना है, कैसे व्यवहार में आना है, अपनी स्थिति को बिगाड़ना नहीं है, मूड खराब नहीं करना है, खुश रहना है, और वही पेपर बन करके सब सामने आ जाते हैं। तो हम सब समझे हमें इन पेपर्स को पार करना है, किया था करेंगे, पास होकर के दिखाएंगे, विजयी थे, विजयी हैं, विजयी रहेंगे, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जहां सफलता नहीं मिलती है, लगता है ठीक नहीं है, आप थोड़ा शांत होकर के धैर्यता से देखना, कहीं विधि गलत है, कहीं न कहीं विधि का उल्लंघन है, इसलिए सिद्धि नहीं मिल रही। विधि पूर्वक कोई कर्म ब्राह्मण करे और उसको सिद्धि न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। विधियां बाबा ने सब सिखाई हैं, और रोज के वरदान में जब मुझे सेवा दी थी ना दादी ने, तो मेरे मुख से निकला था दादी के सामने, एक दिन बाबा आए थे 88 की बात है, तो बाबा ने मधुबन वालों से रात भर मिला, भाइयों से, बहनें रह गई, हम 120 भाई थे। शाम को 7 बजे बाबा का मिलना शुरू हुआ और सुबह 7 बजे दादी आई बाबा को छुट्टी देने के लिए, तो मैं लास्ट में मिल रहा था। तो दादी जब मिल के उठा तो मेरे को बुलाया, इधर आओ, रात भर बाबा ने क्या किया, बहने रह गई, दूसरे लोग रह गए, तुम 120 भाई ही मिल पाए रात भर। तो मैंने कहा दादी आज बाबा ने बहुत से वरदान दिए और इतने वरदान दिए हैं, तुम लोग इतने वरदान दिए, छत ऐसा करो तुम सब टाइप करके ले आओ। तो मैं सारी रात लिखा था, हाथ से लिखा था, तो जब मैं वो टाइप किया तो इतनी सारी किताब जैसा बन गया। तो 120 लोगों को, भाइयों को, बाबा ने कम से कम एक एक को 20 मिनट आधा घंटा वरदान दिए, माना कुछ न कुछ उनकी विशेषताएं सुनाई। तो जब मैंने कहा वरदान दिया तो दादी कहती टाइप करके ले आओ। जब मैं टाइप करके ले गया तो दादी कहती क्या करेगा। तो हमने ऐसे ही कह दिया, दादी जिनको भी बाबा ने कहा है मैं उनको अच्छी तरह से डिजाइन में टाइप करके देता हूँ, उनका फोटो निकला है वो फोटो लगा लेंगे और अपने अपने ऑफिस में मढ़ करके अच्छी तरह से रखेंगे, पढ़ते रहेंगे, खुश होते रहेंगे। दादी कहती अच्छा तुम लोग इतने स्वार्थी हो, तुम्हारे लिए बाबा ने वरदान दिया है, नहीं ये सब ब्राह्मणों के लिए, इसलिए सबको भेजने के लिए तुम तैयारी करो, कैसे भेजेगा तुम जानो। मैं कैसे भेजूंगा, कहती मुरली के नीचे लिखो। अब एक एक का वरदान तो इतना बड़ा था तो एक पेज वही बन जाए, मुरली कट करनी पड़े। दादी ने कहा नहीं तुम सेट करो और एक वरदान को 3-4-5 मुरली तक सेट करो, जितना चलता चलाओ। तो मैंने 120 वरदान कम से कम 365 बना दिए एक साल के लिए। लेकिन जब बनाए तो भाव के रूप में तो बाबा ने कुछ बोला ही नहीं था, अब वरदान माना भाव तो होना चाहिए। लेकिन ये बुद्धि में आया कि कभी बाबू इसे नहीं कहता तथास्तु, माना हो जाएगा। कुछ भी अगर हमें बाबा से प्राप्ति करनी है तो उसकी विधि बताइए, और विधि यथार्थ है तो उसकी सिद्धि वरदान रूप में मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। अगर आपको सफलता मूर्त भाव का वरदान है, अगर आपको भगवान की मदद मिलती रहेगी, मदद के अधिकारी भाव का वरदान है, तो मदद लेने के लिए विधि है, सफलता प्राप्त करने की विधि है। तो उस तरह से उस पहली लाइन को सेट किया कि अगर सफलता भाव का वरदान लेना है तो हमें अपना सब कुछ सफल करना है, सफल करने से सफलता मुहूर्त बनेंगे। मदद लेनी है, भगवान की अधिकारी बनना है तो हमें हिम्मत का कदम आगे रखना होगा। अब कदम रख ही नहीं रहे हो और भगवान की मदद मांग रहे हो, कहता मैं किसको किसको दूंगा, मेरे सब बच्चे हैं, मदद उनको दूंगा जो एक कदम आगे बढ़ाएंगे। तो आप जितने वरदान पढ़ते हैं, रोज मुरली में आता है, आप उसी नजर से पढ़ो, ये विधि है, ये इसकी सिद्धि है, पहली लाइन से पता चलेगा। जो कुछ कहा है उसकी विधि पहले है, तो हम सब विधि पूर्वक अगर चलेंगे तो सिद्धियां मिलेंगे। सफलता हमारा अधिकार है, इसलिए कभी भी निराश उदास नहीं होना। ये बड़े कड़े संस्कार हैं, ये तो कितने समय से ज्ञान में चलते हैं, वही अशुद्ध संकल्प आते हैं, जरूर कुछ विधि गलत है। रात को कोई तेज मिर्च मसाला खाया, कोई ऐसी चीजें खा लिया या ऐसा दृश्य देख लिया और सो गए जा करके, तो सुख में से गंदे आएंगे, विधि गलत है, उसको सुधार लो ठीक हो जाएगा। पूछने की बजाय जहां पर लगता है ये गलती हो रही है मेरे से, वो ठीक करना है। तो बाबा जैसा बनाना चाहता है, मुझे बनना है, कोई बने या न बने, आप लक्ष्य रख करके रेस करना। अभी 3 दिन भट्टी किया, ऐसे नहीं यहाँ की यहाँ रही, वहां जा करके भी इसका प्रैक्टिकल स्वरूप जीवन से दिखाई दे, परिवर्तन। तो पहली है समझ, दूसरी महसूसता, तीसरी तपस्या, और तपस्या के लिए बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं परिवर्तन आता। समझ महसूसता तपस्या और सहन शक्ति सामना करने की शक्ति शक्तियां तब वो तपस्या सफल होती। जैसे आप थोड़ा सा देखो, एक सात बज गया मैं बताता हूँ, वाल्मीकि डाकू दसु था, सब कुछ कर रहा था, कोई पता नहीं था इसका परिणाम क्या होगा। एक दिन उसने साधुओं को पकड़ लिया लूटने के लिए, तो बोलते किसके लिए तुम लूट रहा है, परिवार के लिए। अरे इसका पाप तो परिवार पर भी चढ़ेगा तेरे पर भी चढ़ेगा, लेकिन परिवार वाले पाप को मानेंगे तो काम तो तुम गलत कर रहा है। कहता मैं पूछ के आता हूँ। पूछने के लिए गया, उनसे पूछा कि भाई ये जो हम गलत ढंग से पैसा ला के आपकी पालना दे रहे हैं, इसका ऐसा हिसाब किताब है, इसका भोगना होगी, उसमें भी आप भागीदारी बनोगे। सबने कहा मैं क्यों बनूंगा, मैं थोड़ी करता हूँ, तुम ऐसे क्यों कमा के लाता है, ऐसे क्यों लूट के लाता है। उसको ठक से महसूस हुआ मैं गलत कर रहा हूँ। पहले समझ दी, फिर महसूस किया, और फिर बैठ गया जाके एकदम कोने में, और ऐसी तपस्या की जो दीमकों ने उसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे बॉल बना दिए घर। और जब इतना अखंड तपस्या में बैठ गया तो भगवान कहते प्रसन्न हो गए उसके, और कहते हे वाल्मीकि क्या मांगता है। अब बाल बने हुए थे ना, घर बने हुए थे उसके शरीर के ऊपर, कितना सहन किया, कितना त्याग किया उसके लिए, तब उसको वरदान मिला और वो इतना बड़ा विद्वान बना जो एक रामायण लिख डाली। परिवर्तन परिवर्तन के लिए ये चारों बातें जरूरी है। तो संस्कार शुद्धि के लिए आप चार बातों को थोड़ा सा अटेंशन से देखना। ओके जी, क्या बोले, सहन किया, चौथी बात बताए, सहन किया उसको, बहुत कुछ त्याग करना पड़ा, सहन करना पड़ा। चलो भाई हम आधा घंटे योग करेंगे, सभी तैयार है ना उड़ने के लिए। बाबा ने हम सबको एक बहुत सुंदर विमान दिया है, बुद्धि का विमान है, और जितनी बुद्धि दिव्य है अलौकिक है, उसमें जितना अच्छा डबल रिफाइंड पेट्रोल है, विमान में पेट्रोल अच्छा चाहिए, वो है खुशी और नशा। आप खुशी और नशे से एकदम दिव्य बुद्धि के आधार से इस साकार वतन से अव्यक्त वतन, अव्यक्त वतन से मूल वतन सैर कर सकते हो। पहले हम साकारी याद में भ्रकुटी आसन पर बैठते हैं, लाल लाइट कर दो। अपने चमकते हुए हीरे को देखो, लाइट माइट से संपन्न, मैं एक चमकता हुआ हीरा, भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूं। बहुत सच्चे दिल से, पवित्र भावनाओं से इस सभा में हमें बाबा को बुलाना है। अव्यक्त वतन में बाप दादा कंबाइंड रूप में विराजमान है, मैं आत्मा इस साकार सृष्टि में इस भ्रकुटी आसन पर हूं। इतने दिल से कहो मीठे बाबा, प्यारे बाबा, कुछ पल के लिए मैं आपके सानिध्य का अनुभव करना चाहता हूं। ये आसन आपके लिए बहुत उपयुक्त है, स्वच्छ है। भ्रकुटी आसन पर एक तरफ परम पवित्र शिव बाबा विराजमान है, एक तरफ हम सबके आदि पिता संपूर्ण ब्रह्मा बाबा विराजमान है और मैं आत्मा अपने माता पिता का, बाप दादा का स्नेह और सानिध्य प्राप्त करके स्वयं को सर्व शक्तियों से संपन्न बना रहा हूं। सभी मास्टर त्रिमूर्ति बन करके बैठो, कोई भी हलचल नहीं। प्रेम और शक्ति सर्वशक्तिवान की शक्ति, बड़ी मां का प्यार अनुभव करो।